नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। बहुराष्ट्रीय कंपनी मेटा ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर को टक्कर देने के लिए नया ऐप थ्रेड्स जारी किया है। ये नया ऐप उद्योगपति एलॉन मस्क के स्वामित्व वाले सोशल मीडिया मंच को सीधी चुनौती देगा। थ्रेड्स मेटा के तस्वीर साझा करने वाले ऐप इंस्टाग्राम का टेक्स्ट साझा करने वाला संस्करण है। कंपनी के अनुसार ये ऐप ताज़ा अद्यतन जानकारी और सार्वजनिक वार्तालाप के लिए एक नया मंच प्रदान करेगा। ये ऐप बुधवार आधी रात के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान सहित 100 से अधिक देशों में एप्पल और गूगल के एंड्रॉयड ऐप स्टोर पर उपलब्ध हो गया। ऐप के उपलब्ध होते ही शेफ गॉर्डन रामसे, पॉप स्टार शकीर और मार्क हायल जैसी कई बड़ी हस्तियों ने इस पर अपने खाते बनाए। इसी पर किसी थ्रेड को लाइक, रीपोस्ट, रिप्लाई और कोट करने का विकल्प मौजूद है। BSE की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण बृहस्पतिवार को सुबह के कारोबार में 301.10 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। स्थानीय शेयर बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच बाजार पूंजीकरण नई ऊंचाई पर पहुंचा है। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 185.37 अंक या 0.28% की बढ़त के साथ 65,631.41 अंक पर था। शेयर बाजार में तेजी के बीच BSE की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 30,01,10,526.12 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 26 जून से 4 जुलाई के दौरान रिकॉर्ड तेजी के बीच 2,500 से अधिक अंक चढ़ा था। रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में संचालित हो रहे 2 सहकारी बैंकों के बैंक लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। RBI ने 2 अलग बयानों में कहा कि उसने बुलढाणा स्थित मलकापुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और बेंगलुरु स्थित सुश्रुति सौहार्द सहकार बैंक नियमित के बैंकिंग लाइसेंस निरस्त कर दिए हैं। बयान के मुताबिक बुधवार का कारोबार बंद होने के बाद ये दोनों सहकारी बैंक किसी तरह का बैंक से जुड़े कामकाज नहीं कर पाएंगे। केंद्रीय बैंक ने इन सहकारी बैंकों के पास समुचित पूंजी एवं आय संभावनाओं का अभाव देखते हुए ये कदम उठाया है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने बुधवार को कहा कि वित्तीय साक्षर होने से किसी को आर्थिक समस्याओं का सामना करने की बेहतर तैयारी करने की क्षमता होती है, जिससे व्यक्तिगत आर्थिक संकट की संभावनाएं कम हो जाती हैं। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में राज्य स्तरीय वित्तीय साक्षरता पर अखिल भारतीय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ये बात कही। यहाँ एक जारी बयान में उन्होंने कहा कि वित्तीय साक्षरता एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है, क्योंकि ये कमाई, बचत, खर्च, निवेश और ऋण की अवधारणा को समझने की नींव रखता है। इससे समग्र वित्तीय कल्याण के लिए वित्त के बारे में ठोस निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। राज्यपाल ने कहा कि ये एक सुरक्षित बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन धोखाधड़ी से भी बचाता है। कम उम्र से ही बच्चों में पैसे बचाने की आदत डालने से उन्हें वित्तीय रूप से जिम्मेदार व्यस्क बनने में मदद मिलती है। प्रतिभागियों को बधाई देते हुए शुक्ला ने कहा कि छात्र वित्तीय समावेश के संदेश को जन जन तक फैलाने के लिए राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार को बुधवार को 668.17 करोड़ रुपए के लाभांश का भुगतान किया। BOI के प्रबंध निदेशक रजनीश कर्नाटक ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश का चेक सौंपा। इस दौरान वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी भी मौजूद थे। बैंक ने बयान में कहा कि BOI के निर्देशक मंडल की ओर से 30 मई 2023 को 2 रुपए प्रति इक्विटी शेयर का लाभांश घोषित किया गया था। लाभांश का भुगतान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बैंक के वित्तीय प्रदर्शन पर आधारित है। बैंक का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2022-23 में 18.15% बढ़कर 4,023 करोड़ रुपए हो गया। इससे पूर्व वित्त वर्ष 2021-22 में ये 3,405 करोड़ रुपए था। रेलवे कम दूरी वाली कुछ वंदे भारत ट्रेनों में सीटें खाली रहने की स्थिति को देखते हुए किराया कम करने के लिए टिकटों की कीमत की समीक्षा कर रहा है। सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक अपेक्षाकृत छोटी दूरी वाली कुछ वंदे भारत ट्रेनों में सीटें पूरी तरह भर नहीं पा रही हैं। ऐसी स्थिति में रेलवे उनके किराए की समीक्षा कर किराए में कटौती करने की योजना बना रहा है। इंदौर भोपाल, भोपाल जबलपुर और नागपुर बिलासपुर जैसी वंदे भारत ट्रेनों के किराए की समीक्षा की जा रही है। इन सभी ट्रेनों में सीटें काफ़ी हद तक खाली चल रही हैं। देश की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन राइट्स इशू जारी कर पूंजी जुटाने की योजना बना रही है। IOC ने बुधवार को शेयर बाजारों को दी सूचना में कहा कि उसके निदेशक मंडल की 7 जुलाई को होने वाली बैठक में राइट्स इशू के जरिए पूंजी जुटाने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इस पूंजी का इस्तेमाल विभिन्न परियोजनाओं में करने की तैयारी है। इस तेल वितरक कंपनी में सबसे बड़ी हिस्सेदार सरकार इस राइट्स इशू को खरीद कर नई पूंजी में डाल सकती है। सरकार ने पहले ही तीनों सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों में पूंजी डालने की योजना बनाई हुई है। इसके जरिए इन कंपनियों की परिचालन परियोजनाओं को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अनुकूल बनाने की तैयारी है। IOC के पहले भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 28 जून को 18,000 करोड़ रुपए मूल्य के राइट्स इशू जारी करने का फैसला किया था। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।